हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ब्रेकफास्ट टेबल पर युग और सारा की बहस हो गई और उस बहस का कारण कृषा थी। सारा बीच ब्रेकफास्ट के अपने कमरे में चली गई तो गुस्से में युग भी रिवॉल्वर लेकर कृषा के कमरे में जाने लगा। शब्द वहीं पर मौजूद था। वो दौड़कर उसके पीछे गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। युग, प्लीज ये मत करो, तुम ऐसे नहीं हो, शब्द ने युग के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा। युग ने शब्द का हाथ झटका और उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखकर कहा, ओ रियली, मैं कैसा हूँ ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, किसी से मेरा मतलब किसी को भी। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुम सबसे दूर, इसका कारण भी तुम्हें अच्छे से पता है, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। युग की बात सुनकर शब्द की नज़रें झुक गई। वो कुछ पल चुप रहा और फिर बाद में बोला, युग, उन लोगों में और कृषा में फ़र्क है। कृषा इनोसेंट है, उसने तुम्हें किसी भी तरीके से धोखा नहीं दिया है, ना ही तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, कभी गलती से भी हर्ट नहीं किया होगा, तुम उसे इस तरह नहीं मार सकते। उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है और हमेशा की तरह मेरी तकलीफ कोई नहीं समझेगा। अपनी बात खत्म करके युग वहाँ से जाने लगा। वो कुछ कदम पहुँचा ही होगा कि उसने बिना मुड़े तेज आवाज़ में कहा, गलती से भी मेरे पीछे आने की गलती मत करना शब्द राणा। युग के जाने के बाद शब्द ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो उसे जाते हुए देख रहा था। उसके बाद शब्द ने धीमी आवाज में खुद से कहा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं समझ पाएगा? लोगों का रिश्ता पैदा होने के बाद एक दूसरे से जुड़ता है, लेकिन हम तो पैदा होने से पहले से भी एक साथ थे। अपनी मॉम के बोलते हुए शब्द रुक गया और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। शब्द की आंखों से आंसू का कतरा बह गया, जिसे उसने पोंछते हुए कहा, आज मॉम होती तो तुम एक अलग ही इंसान होते। उनके साथ जो भी हुआ उसके बाद से ही तुम ऐसे बन गए हो, एक डेविल जो बस दूसरों के खून का प्यासा होता है। मेरा भाई ऐसा नहीं था और आज ऐसा है तो उसकी वजह सिर्फ आप लोग हो। शब्द के लिए अब खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो युग से बिल्कुल अलग था और अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता था, इसलिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए शब्द वहां से अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ युग गुस्से में कृषा के कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कृषा गहरी नींद में सोई हुई थी। सोते हुए कृषा के मासूम चेहरे को देखकर युग एक पल के लिए रुक गया। उसने बेडसाइड का ड्रॉअर खोला और उसमें रिवॉल्वर रख दी। युग कृषा के चेहरे को खोए हुए अंदाज में देख रहा था, तभी उसे नींद में कृषा की सिसकी सुनाई दी। ये इस तरह क्यों कर रही है, इसकी तबीयत तो ठीक होगी ना, युग ने बड़बड़ा कर कहा और फिर अपने हाथ को कृषा के माथे पर रखा। कृषा का शरीर बुखार से तप रहा था। उसे इस हाल में देखकर युग ने आंखें बंद की और बड़बड़ा कर कहा, क्या सच में मैं इसके साथ कुछ ज्यादा ही रूढ़ हो गया था? मुझे इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन इतने भी तो, मुझे आज तक किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया और इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो इसने मुझे मारा, कहते हुए युग ने अपनी आंखें खोली। फिर उसने इधर उधर देखा। सामने की कबर्ड में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। युग ने उसमें से कुछ मेडिसिन चेक की, फिर उसने कृषा के लिए पानी गर्म किया और दवाइयों के साथ उसके पास आकर बैठ गया। उठो, युग ने सख्त आवाज में कहा। उसने कृषा का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। तुम्हें मेडिसिन लेने की जरूरत है। कृषा की तबीयत उस वक्त काफी खराब थी, इतनी कि वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसने बंद आंखों से ही नामिस सिर हिला दिया। मुझसे नहीं उठा जाएगा, कृषा ने धीमी आवाज में कहा और फिर खांसने लगी। युग ने कृषा को लेटे हुए में ही मेडिसिन दे दी। कृषा को बीमार देखकर युग भूल गया कि वो यहाँ किस मकसद से आया था। अब वो कृषा के बालों को सहला रहा था। कृषा को काफी देर सहलाने के बाद भी युग ने महसूस किया कि उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, तो उसने कृषा से कहा, मैं डॉक्टर बुला देता हूँ, तुम्हारा फीवर कम नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे इस कमरे से बाहर नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा, शब्द प्लीज मेरे पास में से कहीं मत जाना। कृषा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी और वो आधी नींद में भी थी, इसलिए उसे लगा कि वो इस वक्त शब्द की गोद में है। उसने युग का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, युग ने जवाब दिया। फिर वो धीरे से बड़बड़ा कर बोला, लेकिन प्लीज मुझे शब्द के नाम से तो मत बुलाओ। कुछ देर में कृषा दवाइयों की वजह से नींद के आगोश में थी। उसके सोने के बाद युग ने उसे अपनी गोद से उठाकर बेड पर सुलाना चाहा, लेकिन कृषा ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। ये देखकर युग के फेस पर हल्की स्माइल थी, एक सुकून भरी छोटी सी मुस्कुराहट जो किसी ने नहीं देखी होगी। युग ने कृषा के फॉरहेड पर किस किया और धीमी आवाज में कहा, यू नो वॉट, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। तुम मुझे बदल रही हो और ये बदलाव मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और गुस्से में तुम्हें ही हर्ट करूंगा। बस यहाँ से जाने के बाद कुछ ऐसा मत करना जिससे मैं गुस्सा हो जाऊँ। बोलते हुए युग ने कृषा के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था, जिसे युग अच्छी तरह समझ रहा था पर चाहकर भी नहीं समझना चाहता था। वो कृषा के चेहरे को देख रहा था और उसकी आंखें नम होने लगीं। युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और वहीं पीछे सिर टिकाकर सो गया। शायद ये आखिरी वक्त था जब वो कृषा को ठीक से इतने करीब से देख पा रहा था। उसके बाद तो वो यहाँ से जाने वाली थी। हेलो गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको पता होगा कि युग अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, जिसे वो चाहकर भी छुटलाना चाहता है। बाकी अपनी नई वाली कहानी का दूसरा प्रोमो डाल रही हूँ, कल तक स्टोरी लाइव हो जाएगी। प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। चंडीगढ़ शहर के आउटसाइड एरिया में एक बड़ा सा मेला था। वहाँ काफी भीड़ थी और लोग अपने एंजॉयमेंट में बिजी थे। भीड़ में से एक लड़की जोर से चिल्लाकर बोली, ओए अर्जुन, वो देख पानी पूरी, आई वांट देम। बोलते हुए वो पानी पूरी के ठेले की तरफ जाने लगी। फिर वो अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुड़ी। कम अर्जुन, वो मुस्कुराकर बोली, जिससे उसके गालों पर हल्के डिम्पल उभरे। उसने ब्लैक जीन्स पर पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहन रखा था। दौड़ते हुए उसके कमर से कुछ ही छोटे घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो लगभग 5 फीट 4 इंच लंबी थी। गोरा रंग, छोटी आंखें और मासूम सा चेहरा, वो आशी थी। आशी वहाँ पर घूमते हुए सामान खरीद रही थी, तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो वही छोटे कद वाला आदमी था जिसने अपना मुंह ब्लैक कलर के कपड़े से कवर कर रखा था। उसके पास एक बड़ा सा काला बैग था। आशी ने नोटिस किया वो आदमी हर एक दुकान पर जाकर थोड़ा बहुत सामान बिखेर कर बिना कुछ लिए वापस जा रहा था। उसे देखकर आशी बड़बड़ाकर बोली, चंडीगढ़ के मुंडे भी काफी तेज हो रहे हैं। उसे तो देखो, कब से सामान इधर उधर बिखेर कर विंडो शॉपिंग कर रहा है। कोई लड़की होती तो फिर भी देखती, लेकिन लड़के भी ऐसा करते हैं, आज पता चला। आशी का ध्यान उस आदमी पर अटक गया। वो उसे नोटिस करने लगी और काफी देर तक करती रही। कुछ देर तक तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे रहा नहीं गया। वो दौड़कर उस आदमी के पास गई। एक बात बताइए भाई साहब, आखिर आप खरीदना क्या चाहते हैं? आशी उससे बोली। और ये शाम के टाइम आप अपना फेस कवर करके क्यों घूम रहे हो?
उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। आशी उस पर चिल्लाकर बोली, क्या कहीं तुम चोर तो नहीं जो सब दुकानों पर थोड़ी थोड़ी देर तक रुककर उनका सामान चुरा रहे हो? तुम्हें उससे मतलब? उसने आशी को घूर कर देखा और जवाब दिया, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब तुमसे तो यहाँ के लोग ही निपटेंगे, आशी ने उससे कहा और फिर जोर जोर से शोर मचाने लगी। अरे भाइयों, बहनों, अंकल, आंटियों, जल्दी से आओ, देखो ये आदमी चोरी करके भाग रहा है। उसकी आवाज ने कई लोगों का ध्यान खींच लिया। लोग उस तरफ बढ़ने लगे। आशी ने उसके मुंह का कपड़ा खींच लिया। उस आदमी ने जल्दी से आशी को धक्का दिया और वहां से भागने लगा। भाग दौड़ में उसका बैग नीचे गिर गया। आशी ने बैग की तरफ देखा। वो उसके पास गई और उसे खोला। बैग खोलते ही वो जोर से चिल्लाई, बॉम्ब, ये एक बॉम्ब है, ये आदमी सब जगह बॉम्ब प्लांट कर रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सबको सुनाई दी और कुछ ही देर में वहां पर अफरा तफरी मच गई। सब लोग बॉम्ब बॉम्ब चिल्लाते हुए वहां से बाहर भागने लगे। अफरा तफरी मचने की वजह से अर्जुन भी घबरा गया। वो इधर उधर आशी को ढूंढने लगा। ये आशी की बच्ची जहां भी जाती है हंगामा मचा देती है, अर्जुन ने सिर पकड़कर कहा। वहां सभी लोग अपने अपनों को ढूंढने लगे और इस चक्कर में भगदड़ बढ़ गई। जल्दी से जल्दी लोग बाहर निकल रहे थे। उन सब के बीच एक सॉफ्ट टॉयज की छोटी सी दुकान के अंदर धमाका हुआ। उसके अंदर का सारा सामान एक झटके में बाहर आ गया। वहां आग लग चुकी थी पर धमाका छोटा था। इस धमाके ने वहां की भागदौड़ को और बढ़ा दिया। आशी अभी भी बॉम बॉम चिल्लाते हुए लोगों की बाहर निकलने में मदद कर रही थी। भीड़ से कुछ दूर दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक के हाथ में एक ब्रीफकेस था और उसने ऑरेंज कलर का हेलमेट लगा रखा था। उसके पास वाले आदमी ने ब्लैक सूट पहना था और उसने चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। परफेक्ट मस्कुलर बॉडी और लगभग 6 फीट के करीब हाइट। उसकी गहरी काली आंखें आशी को गुस्से में घूर रही थीं।